के सुप्रभात में आपका स्वागत है। मैं फाल्गुनी शर्मा आज आपको आमना बेगम अंसारी का एक लेख पढ़कर सुनाने जा रही हूँ। भारतीय मुसलमानों को CAA का स्वागत करना चाहिए, इसके बारे में अफवाह फैलाने वालों से सवाल पूछने चाहिए। आमना अपने लेख में लिखती हैं, रमजान की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत नियमों को अधिसूचित किया जो उन व्यक्तियों को नागरिकता की अनुमति देगा जो अपनी धार्मिक पहचान के आधार पर हाशिए पर होने के कारण पड़ोसी देशों से चले गए। जैसा उम्मीद थी, इस घोषणा ने भारत के राजनीतिक गलियारे में विशेषकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भारतीय मुसलमानों के प्रति अन्याय के नए दावों को लेकर बहस छेड़ दी। प्रभावशाली लोगों और पत्रकारों ने इसी तर्ज पर एक्स पर कई पोस्ट किए। अल जजीरा जैसे अंतर्राष्ट्रीय समाचार पोर्टल ने भी इस मुद्दे को ब्रेकिंग न्यूज की तरह कवर किया। ये दिलचस्प है कि कैसे कुछ समूह CAA को भारतीय मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव की तरह दिखा रहे हैं। भारतीय इस्लामवादी गुट और अल जजीरा जैसे उनके सहयोगी आसानी से इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि CAA भारतीय मुसलमानों सहित किसी भी भारतीय की नागरिकता को प्रभावित नहीं करता है। दुखद बात यह है कि CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ने हमारे देश को उथल पुथल में डाल दिया। दिल्ली के हिंसक दंगों ने देश भर के समुदायों को डरा दिया। इस अराजकता के मद्देनजर देश ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा के साथ साथ अशांति में मारे गए अन्य पीड़ितों के नुकसान पर शोक जताया। कथित तौर पर मरने वालों में 38 मुस्लिम और 15 हिंदू शामिल थे और कई अन्य को चोटें आईं। हमारी सड़कों पर होने वाली संवेदनहीन हिंसा ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मुझे दंगों से तबाह हुए इलाकों का दौरा करना और उन महिलाओं से मिलना याद है जो ईदगाह जैसे अस्थायी शिविरों में शरण लेने के लिए अपने घरों से भागने को मजबूर हो गई थीं। उनकी दुर्दशा को अपनी आंखों से देखना हिंसा की मानवीय कीमत की स्पष्ट याद दिलाता है। पीड़ितों के बारे में खबरें पढ़ना या सोशल मीडिया पर कॉमेंट करना एक बात है, लेकिन उनसे आमने सामने मिलना उनकी जिंदगी में आई तबाही को उजागर करता है। आपको एहसास होता है कि ये जिंदगियां आपस में कितनी जुड़ी हुई हैं और अनावश्यक क्रूरता से इन्हें कितनी आसानी से तोड़ा जा सकता है। उन पलों में कोई भी उन कारणों की सार्थकता पर सवाल उठाए बिना नहीं रह सकता जिनके लिए उन्हें कष्ट सहना पड़े। दिल्ली दंगा पीड़ितों में से कई व्यक्तिगत रूप से किसी भी विरोध प्रदर्शन या राजनीति से प्रेरित गतिविधियों में शामिल नहीं थे, फिर भी उन्हें दोनों समुदायों में हिंसा का खामियाजा भुगतना पड़ा। मेरे दिल पर छाई गहरी उदासी ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, कैसे लोग डर फैला सकते हैं और हिंसा का प्रचार कर सकते हैं, अपने खुद के एजेंडे के लिए निर्दोष लोगों की जान ले सकते हैं। अल जजीरा द्वारा गलत सूचना फैलाने और भड़काने वाली सुर्खियों के साथ लेख प्रकाशित करने की दृष्टि, जैसा कि भारत चुनाव से कुछ हफ्ते पहले मुस्लिम विरोधी 2019 नागरिकता कानून लागू करता है, वही सवाल उठाता है, ये सोचने पर मजबूर करता है। क्या अल जजीरा भयावह और दुखद CAA विरोधी दिल्ली दंगों को फिर से भड़काना चाहता है जिसमें 2020 में लगभग 53 भारतीय नागरिकों की जान चली गई थी? इसी तरह की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग न केवल तनाव बढ़ाती है बल्कि समुदाय की सुरक्षा और स्थिरता को भी खतरे में डालती है। कतरी राज्य के स्वामित्व वाले आउटलेट और अन्य लोगों द्वारा गलत सूचना के जबरदस्त प्रसार ने भारत सरकार को प्रचलन में झूठ को खारिज करने के लिए प्रेरित किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक प्रमुख एजेंसी प्रेस सूचना ब्यूरो को एक्स पर पोस्ट करना पड़ा कि CAA किसी भी भारतीय की नागरिकता को रद्द नहीं करेगा, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। मेरे लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये मानवता, करुणा और एकजुटता का प्रतिबिंब है। एक भारतीय मुस्लिम के तौर पर मेरा मानना है कि देश में अल्पसंख्यकों को इसका पूरे दिल से स्वागत करना चाहिए। हम भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ता जो हमें अपने देश से भागने को मजबूर करते, लेकिन हमें अपने पड़ोस के हिंदू, सिख, ईसाई और अन्य अल्पसंख्यकों के बारे में सोचना चाहिए जो उतने भाग्यशाली नहीं हैं। उनका अस्तित्व ही खतरे से भरा है, खासकर उन महिलाओं के लिए। एक भारतीय मुस्लिम महिला के रूप में क्या मुझे कभी यह डर लगा है कि मुझे या मेरे घर वालों को जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाएगा या उन पर ऐसे अत्याचार किए जाएंगे? मेरे सपने में भी नहीं। एक भारतीय और एक महिला के रूप में मैं खड़े होने और बोलने के लिए मजबूर हूँ। हमें CAA का समर्थन करना चाहिए, न कि केवल एक कानून के रूप में बल्कि उन लोगों के लिए आशा की किरण के रूप में जो हाशिए पर हैं और सताए जा रहे हैं। ये कैसे दुनिया बनाने की दिशा में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है जहाँ करुणा क्रूरता पर विजय पाती है, जहाँ हर निर्दोष मानव जीवन को महत्व दिया जाता है और उसकी रक्षा की जाती है। हमें ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जैसे कुछ नेताओं के बयानों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। उनके हालिया एक्स पोस्ट एक विरोधाभासी रुख को दर्शाते हैं जो वास्तविक चिंता से अधिक राजनीति के दिखावे के बारे में प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि कुछ दिन वो दावा करते हैं कि भारतीय मुसलमानों का पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ कोई संबंध नहीं है, जबकि कुछ दिन वो सवाल करते हैं कि पाकिस्तानी मुसलमानों को CAA के लाभों में शामिल क्यों नहीं किया गया। इस तरह का दोहरापन पहले भी काम करता रहा होगा, लेकिन ये भारतीय जनता के लिए तेजी से पारदर्शी होता जा रहा है। लोग अब ऐसे दोहरे मानदंडों और असंगत आख्यानों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये स्वीकार करना जरूरी है कि औसत भारतीय मुसलमान अपनी परिस्थितियों के लिए अकेले जिम्मेदार नहीं हो सकता। हालांकि हमें अपने द्वारा चुने गए विकल्पों के लिए अपनी व्यक्तिगत जवाबदेही को भी पहचानना चाहिए। नेतृत्व के दिग्गजों और खुद को हमारे रक्षक के रूप में चित्रित करने वालों पर भरोसा करना आसान है, लेकिन अंततः कोई भी हमारे हितों को हमसे बेहतर नहीं समझता। हम दूसरों को गुमराह करने या हमारा फायदा उठाने का आरोप लगाकर जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। हमें अपने फैसलों और काम का भार उठाना होगा। भारतीय मुसलमान खुद को पाकिस्तानी मुसलमानों से अलग नहीं कर सकते, और जब पाकिस्तानी मुसलमानों को CAA का लाभ नहीं दिया जा रहा तो वे विरोध नहीं कर सकते। भारतीय मुसलमानों के रूप में हमें सरकार विरोधी लॉबी या अन्य ताकतों का मोहरा बनने के बजाय सूचित विकल्प चुनने को प्राथमिकता देनी चाहिए, जो हमें भीड़ में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं और उकसाते हैं। द प्रिंट के सुप्रभात में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।